परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय एक तारापुर से। मैं सुरेंद्र मणि मिश्र, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी और संस्कृत, आपके समक्ष एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। हमारा विषय आज का समास है। समास जिस प्रकार कविता में अलंकार काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार गद्य में समास वाक्य विन्यास और शब्द लालित्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। काव्य में अलंकार और छंद कवित्व की कसौटी है, तो गद्य में सामासिक शब्दावली शब्द चातुर्य को व्यक्त करता है और ये गद्य विधा की कसौटी माना जाता है। ये समास है क्या, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसके प्रथम भाग में हम समास की उत्पत्ति और उसके अर्थ के साथ समास रचना के आवश्यक अंग, पद और समास विग्रह सहित समास के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार सर्वप्रथम हम समास शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यह शब्द संस्कृत के अस धातु में सम उपसर्ग जोड़कर बना है, जिसमें अस धातु का अर्थ है संक्षेप करना। इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। इस प्रकार इसकी परिभाषा बनती है, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण जैसे रसोई घर, एक शब्द रसोई है और दूसरा शब्द घर, दोनों को जोड़कर हमने बनाया रसोई घर, अर्थात रसोई के लिए घर। इसी प्रकार दूसरा शब्द है अकाल पीड़ित, अकाल और पीड़ित अर्थात अकाल से पीड़ित। इस प्रकार से ये दो शब्द मिलकर एक नवीन और सार्थक शब्द की रचना करते हैं, जो समास कहलाते हैं। समास के लिए आवश्यक तत्व या अंग जिसे हम कहते हैं, इसके लिए कम से कम दो सार्थक शब्दों का होना आवश्यक है। व्याकरण की भाषा में इसके पहले शब्द को पूर्वपद और दूसरे शब्द को उत्तरपद कहा जाता है। जैसे गंगा जल, गंगा जल में गंगा शब्द पहले आता है, इसलिए इसे पूर्वपद कहा जाएगा, और जल बाद में आता है, इसे व्याकरण की भाषा में उत्तरपद कहा जाएगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि समास के नियमों से बने शब्दों को हम सामासिक शब्द कहते हैं। इस प्रकार दो शब्दों से मिलकर बने हुए नए शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं। इन सामासिक शब्दों को व्याकरण की भाषा में हम समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, इसमें का लोप हो गया है और इनके योग से जो हमने समस्त पद का निर्माण किया वह राजपुत्र बना। इसी प्रकार माता और पिता में और शब्द का लोप हो जाता है और जो शब्द बनता है वो माता पिता बनता है। इसी प्रकार हम इसकी एक और विधा समास विग्रह कहलाती है। जब समस्त पदों के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह में समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है। जैसे पिछले उदाहरण के हिसाब से ही लें, राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब यहाँ पर अलग करते समय विभक्तियों का प्रयोग किया गया और वो हो गया राजपुत्र से राजा का पुत्र, जिसे हम विग्रह कहते हैं। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। हमने जो इसका प्रयोग किया था वो दही बड़ा शब्द था और विभक्तियों के प्रयोग के साथ जब विग्रह होता है तो इसे हम बोलते हैं दही में डूबा हुआ बड़ा। इस प्रकार ये समास की एक सामान्य जानकारी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसी के साथ अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये समास होते कितने प्रकार के हैं। सामान्यतया समास को चार भागों में कुछ विद्वानों ने माना है और कुछ विद्वानों ने इसके छह भेद माने हैं। विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से हम इनके छह भेदों की चर्चा करेंगे। इसमें पहला समास है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीही समास। इनकी परिभाषा और उदाहरण के साथ हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। इस प्रकार हमारी आज की इस चर्चा में हमने समास की उत्पत्ति, अर्थ, समास के आवश्यक अंग, पद, समास विग्रह के साथ उनके भेदों की चर्चा की। अब आपके ज्ञानार्जन के परीक्षण के लिए नीचे कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिन्हें आप करेंगे। अगले सत्र में समास के भेदों की परिभाषा और उदाहरणों के साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार।